मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुछ सूचनाएं आप सबको देना चाहूँगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जिसे सुनकर शायद आपको अच्छा लगेगा, और वो यह है कि हम लोगों ने करेंट क्विज के नाम से एक नए फीचर की शुरुआत की है। फीचर ही आप कह लीजिए, करेंट क्विज के नाम से, और यह नॉलेज सेंटर के अंदर मिलेगा, तो उसमें आपको करेंट क्विज मिलेगा। दरअसल ये करंट क्विज है क्या, अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम रोजाना मंडे टू फ्राइडे इन 5 दिनों में डेली लगभग 5 क्वेश्चंस डालेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसे आप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस कहते हैं। 5 क्वेश्चंस होंगे लगभग, और ये करंट अफेयर्स पर बेस्ड होंगे। 1-2 दिन 3 दिन की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, और खासकर इन्हें तैयार कुछ इस धारणा को ध्यान में रख करके किया जाएगा कि एग्जामिनेशन में आपको मदद मिल सके, फैक्ट्स के रूप में भी और उसके जो फॉर्मेट है, उसकी जो संरचना है, उसके रूप में भी। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नॉलेज सेंटर के अंदर आपको मिलेगा करेंट क्विज के नाम से। और मैं चाहूँगा कि जब आप इसे देखें तो हमें फीडबैक के जरिए अवगत भी कराएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, और यदि आप अपने कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। एक दो सूचनाएं और हैं कि जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेज दिया गया है, वो देख लेंगे। और साथ ही दोस्तों, हम लोगों ने यूट्यूब पर अभी एक प्रोग्राम डाला है, एक ऑडियो वीडियो डाला है, और वो है कि जो यूपीएससी का जो प्री 2022 का जो पेपर आया है, और खासकर इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं प्री एग्जामिनेशन के कट ऑफ मार्क्स, तो वो इतना कठिन क्यों है। मुझे लगता है कि ये एक तार्किक रूप से रखी गई बात है, और मैं चाहूँगा कि आप सब इसे सुने, और केवल सुने ही नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा आपस में शेयर भी करें, क्योंकि इसका पर्पज़ यह है कि जो हमारे नीति निर्माता हैं उन तक यह आवाज़ पहुँच सके, तो आप जरा उसे भी देख लेंगे। दोस्तों, मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में ही कुछ बातें शेयर करूंगा, लेकिन आइए पहले जो एक महत्वपूर्ण घटना है, खबर है कह लीजिए, उसे देख लेते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में आपने सुना होगा, बशर्ते कि आपने इस साल का प्री एग्जामिनेशन दिया हो। बैंक बोर्ड ब्यूरो पर एक क्वेश्चन आया था, और सच पूछे तो जब बैंक के बारे में बातें होती हैं या बैंकिंग का जब चैप्टर आप पढ़ रहे होते हैं तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में ज्यादातर पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इस बार पूछा गया था। उसका कारण यह था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही थी कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसका स्वरूप ऐसा नहीं है कि वो हमारे यहाँ के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनके लिए महाप्रबंधकों और निदेशकों का चयन कर सके, मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, उसकी एबिलिटी कहना चाहिए ऐसी नहीं है, तो इसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो उसी को आधार बना करके अब भारत सरकार ने इस बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर एक नए ब्यूरो का गठन किया है। हमारी कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसने इसके लिए स्वीकृति दे दी है, और अब जो नई संस्था बनाई गई है उसका नाम है वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, इंग्लिश में यह है फाइनेंस सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, फाइनेंस सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप कहेंगे FSIB। तो मैं चाहूँगा कि आप इस संस्थान के बारे में थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी कर लें, हालांकि बहुत ही सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए, इसे अधिकार दिया गया है कि खासकर कुछ जो वित्तीय संस्थान हैं उनके जो हेड होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, महाप्रबंधक और निदेशक, उनका अपॉइंटमेंट करें। तो जब मैं कह रहा हूं कि वित्तीय संस्थान, तो इसे आप दो भागों में बांटकर एक प्रकार सरलीकृत की दृष्टि से आप देख सकते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक आप जानते हैं कि जिसमें गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो ज्यादा है, उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो इसमें अपॉइंटमेंट करेगी निदेशक और महाप्रबंधक जो भी होंगे, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी जो हेड्स होंगे, जो महाप्रबंधक और निदेशक होंगे, उनकी नियुक्ति ये ब्यूरो करेगी। जब मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसका मतलब क्या है, देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जो फाइनेंस का काम करते हैं, जो मुद्रा का लेन देन का काम करते हैं, जैसे लोन देना, डिपॉजिट लेना, इन्वेस्टमेंट के लिए काम करना, तो इस तरह का काम करने वाली जो संस्थाएं हैं वो बाकायदे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहलाती हैं, और ये सब रिजर्व बैंक के द्वारा रेगुलेटेड होती हैं। अगर हम उदाहरण के जरिए जानना चाहें तो जैसे आप देखिए कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप एक्जिम के नाम से जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे आप नाबार्ड कहते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आप सिडबी के नाम से जानते हैं, तो ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल्स थे, ताकि बात थोड़ी सी आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड का, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूंजीगत व्यय के बारे में बात की गई है, खासकर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि भारत सरकार ये सोच रही है कि हम अपने पूंजीगत व्यय को लगातार बनाए रखें। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, खासकर कोविड के दौर में जो आर्थिक वृद्धि की जो दर धीमी हुई और अभी जो महंगाई बढ़ गई है, उसका इम्पैक्ट सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक रूप में पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार शुरू से ही, खासकर कोविड के समय में भी, आप देख रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के निर्णय को लेकर आगे चल रही थी, और उन्होंने यही कहा कि हम इस पर अटल रहेंगे। ये जो पूंजीगत व्यय है अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान समझने की कोशिश करें कि हम किसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब व्यय है, व्यय का मतलब है एक्सपेंडिचर, आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके आगे शब्द लगा है पूंजीगत व्यय, तो ये कैपिटल है, तो ये क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है। तो अगर आप शब्दों से ही अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। मतलब ये व्यय तो है, लेकिन एक ऐसा व्यय है जिससे कैपिटल का निर्माण हो रहा है, मतलब जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि उससे हमारा कैपिटल तैयार, हमारी पूंजी तैयार हो रही है। जैसे मान लीजिए कि एक सरकारी बिल्डिंग बनाई गई है, अस्पताल का भवन बनाया गया, तो अब उसको बनाने में मान लीजिए कि 20 करोड़ रुपये खर्च हो गए, तो 20 करोड़ रुपये तो खर्च हो गए, लेकिन उससे एक बिल्डिंग बन गई ना, उसकी कीमत है, तो कैपिटल है, वो पूंजी है। तो पूंजीगत व्यय का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप बजट को भी अच्छे से समझ पाएंगे, और खासकर बजट को और राजकोषीय घाटे, इन सब को लेकर के कभी जो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मेंस में, और यहां तक कि प्री में भी, उनके सही उत्तर तक आप पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों, ये मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल कमेंट है, इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। लेकिन अगर अभी तक आपकी इकोनॉमिक्स की बिल्कुल कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए आप बोर भी महसूस न करें। ऐसी स्थिति में बस एक बार पढ़ करके आप इसे छोड़ दें, जब आप थोड़ा सा और बेहतर स्थिति में आ जाएंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, तब आप इसे ही बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय के बारे में। मैं एक दो बातें आप सबसे कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि फ्राइडे को मैं आप सबसे 84th क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा था, जो भारत के संविधान में मंत्रियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है या नहीं किया गया है, और इसके बाद उसका जो दूसरा स्टेटमेंट था वो था कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दो स्टेटमेंट दिए हुए थे, और इसमें से पूछा था कि कौन सा सही है, कौन से सही है। तो अब आप देखिए कि जो पहले स्टेटमेंट के बारे में मैंने जो भी व्याख्याएं की थी कि संविधान क्या होता है, संविधान में किस किस तरह की बातें होनी चाहिए, या जब हम और दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं तो उस टॉपिक से कैसे दूसरे विषयों के लिए भी तथ्य अपने आप निकलते चले आते हैं, जब हमारा ध्यान इन सब पर होता है तब फिर हम जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हालांकि सीधे सीधे हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सही अनुमान तो लगा ही लेते हैं। देखिए, जब अनुमान शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं तो आप नहीं कह सकते कि 100% ही है, क्योंकि अनुमान है ना। अगर वो 100% सही है फिर तो फैक्ट है, फिर तो वो सत्य है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, अनुमान शब्द को हटा देना चाहिए। लेकिन अगर अनुमान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो ये है कि मैं अनुमान तो लगा रहा हूं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह सच होगा। अब मुझे क्यों पूरा विश्वास है कि यह सच होगा, उसके लिए ही मैंने आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे फ्राइडे को, जो मैंने चर्चा की थी, आप ध्यान दीजिए तो आपको याद आ जाएगा। अब आप देखिए कि जो इसका पहला स्टेटमेंट है, सीधी सी बात है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्टर इस तरीके का नहीं होता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं होगा, क्योंकि चरित्र ही नहीं है उसका। फिर जब हम दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं तो देखिए दूसरे स्टेटमेंट में जो बात कही गई है वो बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई घुमा फिरा करके बात कही गई है या बहुत ही कोई नया सा तथ्य ले आया गया है और वो बताया गया है और उसमें आपको अपने दिमाग पर दबाव डाल करके उसकी एनालिसिस करके सोच विचार करके और ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है। अगर आपको इसके लिए भी अनुमान लगाना पड़ रहा है, मान लीजिए, तो आपको अपनी तैयारी की स्थिति के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट है। ये बात पढ़ते साथ ही आपके दिमाग में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये सच है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं तो ये फैक्ट बहुत जाना माना सा फैक्ट है और ये सही स्टेटमेंट है, तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन जो सही होगा वह होगा बी, यानी कि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, कल उस दिन की बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी तो मैंने सोचा उसे पूरा कर लेना चाहिए। तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं फ्रेंड्स, 7 से 21 अक्टूबर के बीच में होने वाली हैं, तो इसके लिए 2 मित्रों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। एक है ऋचा भारती भागलपुर बिहार से और दूसरी है अदिति कुमारी पटना बिहार से। तो ऋचा और अदिति, आप दोनों का मैं एकेडमी की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, वैभव श्रीवास्तव मगहर उत्तर प्रदेश से, अजय लखनऊ से और अलका चंदर पंजाब से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।